से सफेद खरगोश का पीछा करो। YouTube ट्रांसक्रिप्ट। फ्रेडरिक विलहेम नीचे का संश्लेषण। सृजन करें या आलोचना। एक महिला सुबह 3 बजे जागती है, अनिद्रा के कारण नहीं, किसी बुरे सपने के कारण नहीं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जागती है जिससे वो नफरत करती है। उसका चेहरा कमरे के अंधेरे में एक मूक जुनून की तरह दिखाई देता है। वो अपना सेल फोन उठाती है और लगभग बिना एहसास के उस व्यक्ति के सोशल मीडिया को खंगाल रही है, कुछ भी ऐसा ढूंढ रही है जो उसके महसूस किए गए गुस्से को सही ठहरा सके। एक नई तस्वीर, एक राजनीतिक टिप्पणी, उसकी राय से अलग एक राय, उसे वो मिल जाता है। उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है, वो वापस हो जाती है। ये दृश्य हर रात लाखों घरों में दोहराया जाता है। लोग उनके लिए नहीं जागते जिनसे वे प्यार करते हैं, बल्कि उनके लिए जागते हैं जिनसे वे घृणा करते हैं। दिन के पहले और आखिरी विचार अपने सपनों को नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को समर्पित करते हैं। इन दरिंद एक अदृश्य वेदी का निर्माण करते हैं जहां वे वो सारी ऊर्जा जमा करते हैं जिसका उपयोग वे कुछ अपना बनाने के लिए कर सकते थे। एक परेशान करने वाली सच्चाई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। हमारे दुश्मन हमारे प्रियजनों से ज्यादा दिमागी जगह घेरते हैं। हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, उनके बारे में ज्यादा सपने देखते हैं। बिना एहसास के वे हमारे अस्तित्व के गुप्त देवता बन गए हैं, नकारात्मक देवता जिनकी हम घृणा के माध्यम से पूजा करते हैं, जिन्हें हम अपने आक्रोश से पोषित करते हैं, जिन्हें हम अपनी अवमानना से जीवित रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम अपने आप को इतना क्यों समर्पित करते हैं जिसे हम अस्वीकार करने का दावा करते हैं? इसका उत्तर एक क्रूर दार्शनिक खोज में निहित है। हमें अपने दुश्मनों की जरूरत है, संयोग से नहीं, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि एक गहरी अस्तित्वगत आवश्यकता के कारण। वे हमारे रास्ते में बाधा नहीं है, वे खुद रास्ता है। वे हमारे जीवन में रुकावटें नहीं है, वे हमारे जीवन का कारण बन गए हैं। फ्रेडरिक नीचे ने इसे भेदक स्पष्टता से देखा। उन्होंने महसूस किया कि हर बड़ी नफरत के पीछे एक छोटी सी छिपी हुई नपुंसकता होती है, कि हर दुश्मन जिसे हम बनाते हैं वास्तव में एक आईना होता है जिस पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा की जाने वाली चीज को नहीं बल्कि खुद में खोजने से सबसे ज्यादा डरने वाली चीज को प्रक्षेपित करते हैं। ये दूसरों के बारे में कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान की गुप्त वास्तुकला के बारे में एक कहानी है। इस बारे में कि हम कौन हैं, ये कैसे बनाते हैं, न केवल उसके माध्यम से जो हम बनना चुनते हैं बल्कि मुख्य रूप से उसके माध्यम से जिसे हम नफरत करना चुनते हैं, और उस चुनाव के लिए हम जो भयानक कीमत चुकाते हैं उसके बारे में। क्योंकि अस्तित्व के लिए दुश्मनों की जरूरत से भी ज्यादा परेशान करने वाली एक चीज है ये खोजना कि अगर विबस गायब हो जाए तो हम कौन होंगे। नफरत की पवित्र दिनचर्या। हर सुबह अपनी कॉफी पीने से पहले ही वो पहले से ही जानता है कि आज वो किससे लड़ने वाला है। वो अपना फोन खोलता है और वे वहां है, राजनेता जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, इन्फ्लुएंसर जो निरर्थकता फैलाते हैं, पूर्व सहयोगी जिन्होंने वो सफलता हासिल की जिसके वो हकदार थे। वे जाने पहचाने चेहरे हैं, विरोधियों की एक गैलरी जिसे वह एक माली की देखभाल से पोषित करता है। उसे इसका एहसास नहीं है लेकिन उसने एक पवित्र दिनचर्या विकसित कर ली है। वो उठता है, जांचता है कि क्या उसके दुश्मन अभी भी मौजूद है। जब वो इसकी पुष्टि करता है तो राहत महसूस करता है और फिर वो अपना दिन शुरू कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में उनकी उपस्थिति इस बात की गारंटी है कि वह भी मौजूद है। नीचे ने इसे गुलामों की नैतिकता, स्लेव मॉरालिटी कहा, जीने का एक ऐसा तरीका जो केवल उसे अच्छा परिभाषित कर सकता है जिसे वो बुरा मानता है। ये पूरी तरह से नकार पर बनी पहचान रखने जैसा है। मैं वो सब कुछ हूं जो वो नहीं है। मैं गुणी हूं क्योंकि वो भ्रष्ट है। मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि वो मूर्ख है। मैं प्रामाणिक हूं क्योंकि वह नकली है। लेकिन यहां कुछ और सूक्ष्म हो रहा है। ये आदमी सिर्फ अपने दुश्मन के कामों से नफरत नहीं करता, वो उसके अस्तित्व से ही नफरत करता है। ध्यान दे कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है। जब वो भ्रष्टाचार के बारे में कोई खबर देखता है तो उसे सिर्फ आक्रोश महसूस नहीं होता, उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है। मुझे पता था, वो सोचता है, मैं हमेशा जानता था कि वे ऐसे ही थे। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बुराई उसकी अपनी अच्छाई की पुष्टि है। नीचे ने महसूस किया कि ये गतिशीलता आकस्मिक नहीं है, ये मूल्यों की एक पूरी प्रणाली है, एक उल्टा धर्म जहां पवित्रता उसमें नहीं है जिसे आप प्यार करते हैं, बल्कि उसमें है जिससे आप नफरत करते हैं, जहां प्रार्थना धन्यवाद नहीं बल्कि एक अभिशाप है, जहां वेदी भगवान को नहीं बल्कि उस शैतान को समर्पित है जिसे आपने अपने लिए चुना है। और हर धर्म की तरह इसके भी अपने अनुष्ठान हैं। सोशल मीडिया पर अंतहीन चर्चाएं, व्हाट्सएप समूह, काम पर बातचीत, जहां मुख्य विषय हमेशा यही होता है कि दुनिया कैसे खो गई है। लेकिन इस गतिशीलता के बारे में कुछ और भी परेशान करने वाला है। जब वो दूसरों की स्वार्थी होने, सत्ता चाहने, सबसे अलग दिखने की आलोचना करता है तो वो ठीक उसी चीज की आलोचना कर रहा होता है जिसकी वह भी इच्छा रखता है लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। दुश्मन उन सभी चीजों का पात्र बन जाता है जिन्हें हम अपने आप में अस्वीकार करते हैं। हम अपनी छाया उस पर डालते हैं और फिर उससे नफरत करके खुद को शुद्ध महसूस करते हैं। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है। हम अपनी ईर्ष्या को नैतिक आक्रोश में, अपनी नपुंसकता को नैतिक श्रेष्ठता में और अपनी साधारणता को सद्गुण में बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये सब अपने आप में कुछ भी बदले बिना करते हैं। नीचे ने देखा कि जीने का ये तरीका वास्तव में एक पलायन है, अपने स्वयं के मूल्यों को बनाने की जिम्मेदारी से पलायन। किसी चीज के खिलाफ खुद को परिभाषित करना किसी चीज के पक्ष में परिभाषित करने से आसान है। ये खोज हमारी प्रकृति के बारे में और भी परेशान करने वाली बात बताती है। हम सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो कभी कभी दुश्मन ढूंढ लेते हैं, हम दुश्मन पैदा करने वाली मशीनें हैं। हमारे दिमाग उन कारखानों की तरह काम करते हैं जिन्हें लगातार हमारी अवमानना के लिए नए लक्ष्य खोजने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके बिना हमें एक भयानक सवाल का सामना करना पड़ेगा। हम वास्तव में कौन है? रिसेंटमेंट की कीमिया, वो 8 साल की थी जब उसने रिसेंटमेंट की गुप्त शक्ति की खोज की। स्कूल में एक सहपाठी ने सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार जीता। उस रात अपने कमरे में अकेली वो अपनी हार पर रोई नहीं, उसने एक कहानी गढ़ी। लड़की केवल इसलिए जीती क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे थे, क्योंकि शिक्षकों के पसंदीदा थे, क्योंकि दुनिया अन्यायपूर्ण थी। ये पहली बार था जब उसने अपने दर्द को नैतिक श्रेष्ठता में बदल दिया और ये काम कर गया। 30 साल बाद वो उसी सूत्र का उपयोग करना जारी रखती है। हर पदोन्नति जो नहीं मिली, हर रिश्ता जो खत्म हो गया, हर सपना जो सच नहीं हुआ, सब कुछ उसी आरामदायक कहानी में बदल जाता है। समस्या सिस्टम में है, उसमें नहीं। नीचे ने इसे रिसेंटमेंट कहा, लेकिन शब्द के सामान्य अर्थ में नहीं। उसके लिए रिसेंटमेंट जीवन का एक पूरा दर्शन है। यह अस्तित्व का एक तरीका है जो हर व्यक्तिगत विफलता को एक नैतिक जीत में बदल देता है। यह नपुंसकता को आक्रोश में, साधारणता को सद्गुण में बदलने की प्रतिभा है। रिसेंटमेंट वाले व्यक्ति को कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सबसे मूल्यवान चीज हासिल कर ली है, ये निश्चितता कि वो सही है। जबकि दूसरे अश्लील सफलताओं का पीछा करते हैं, उनके पास पहले से ही सर्वोच्च खजाना है, नैतिक शुद्धता। वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, वे असफल है लेकिन उनमें सत्यनिष्ठा है, वे अदृश्य है लेकिन वे सही है। देखें कि ये कैसे काम करता है। जब वे किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें ईर्ष्या महसूस नहीं होती, उन्हें दया आती है, बेचारा। वे सोचते हैं उसने अपनी आत्मा बेच दी। जब वे किसी को खुश देखते हैं तो वे श्रेष्ठता महसूस करते हैं, वे खुश है क्योंकि वे अनभिज्ञ हैं। मैं पीड़ित हूं क्योंकि मैं वास्तविकता देखता हूं। ये एक आदर्श कीमियाई ऑपरेशन है। ये शीशे को सोने में, हार को जीत में बदल देता है। अगर ये विचार आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। असुविधा कुछ गलत सुनने से नहीं आती है, ये कुछ सच को पहचानने से आती है। रिसेंटमेंट न केवल हमारी साधारणता को सही ठहराता है, ये इसे आवश्यक बनाता है। क्योंकि अगर हम जीतना शुरू कर दें तो हम अपनी नैतिक श्रेष्ठता खो देंगे। इसीलिए रिसेंटमेंट वाला व्यक्ति गुप्त रूप से और अनजाने में अपने ही अवसरों को तोड़फोड़ करता है। उसे गुणी बने रहने के लिए हारते रहना जरूरी है, उसे श्रेष्ठ बने रहने के लिए पीड़ित रहना जरूरी है। ये एक आदर्श जेल है। सलाखें बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन चाबी का उपयोग करने का मतलब होगा उस एकमात्र चीज को छोड़ देना जो आपको आपकी पहचान देती है। ये आरामदायक निश्चितता कि आपकी सभी विफलताओं के लिए दुनिया दोषी है, आईने में दुश्मन। एक आदमी अपने जीवन के 40 साल भ्रष्ट राजनेताओं की आलोचना करते हुए बिताता है। एक दिन उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी की पेशकश की जाती है। 6 महीने के भीतर वो ठीक वही कर रहा होता है जिसकी वो आलोचना करता था। जब कोई उसे विरोधाभास की ओर इशारा करता है तो वो चिढ़ जाता है। ये अलग है, वो कहता है, मैं इसे सही कारणों से कर रहा हूं, मैं इसका हकदार हूं। ये कहानी मानव स्वभाव के बारे में कुछ विनाशकारी खुलासा करती है। हम अपने दुश्मनों से इसलिए नफरत नहीं करते क्योंकि वे हमसे अलग है। हम उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे बिल्कुल हमारी तरह है। वे खुले तौर पर वो करते हैं जो हम उन्हीं परिस्थितियों में करते, लेकिन हमें इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। नीचे ने इसे शक्ति की इच्छा, विल टू पावर कहा। हर जीवित चीज का बढ़ने, हावी होने, विस्तार करने का मौलिक आवेग। लेकिन जब ये इच्छा सीधे तौर पर व्यक्त नहीं हो पाती है तो ये पलट जाती है, ये नैतिक शक्ति की इच्छा बन जाती है। वास्तविक शक्ति की तलाश करने के बजाय हम प्रतीकात्मक शक्ति की तलाश करते हैं। बल से हावी होने के बजाय हम सद्गुण से हावी होते हैं। रिसेंटमेंट वाला व्यक्ति अपने दुश्मनों से कम शक्ति नहीं चाहता, वो अधिक शक्ति चाहता है। लेकिन चूंकि वह इसे पारंपरिक तरीकों से प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो एक नई तरह की शक्ति का आविष्कार करता है, न्याय करने की शक्ति। लेकिन इसमें और भी कुछ सूक्ष्म है। रिसेंटमेंट वाला व्यक्ति सिर्फ वो नहीं चाहता जो उसके दुश्मनों के पास है, वो बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता है। चूंकि वो ये स्वीकार नहीं कर सकता, वो इन इच्छाओं को दूसरों पर डालता है और उन पर हिंसा से हमला करता है। इसीलिए उसकी आलोचना हमेशा इतनी विशिष्ट, इतनी अंतरंग होती है। वो ठीक से जानता है कि भ्रष्टाचार कैसे काम करता है, क्योंकि उसने 1000 बार भ्रष्ट होने की कल्पना की है। उसके दुश्मन अजन भी नहीं है, वे उसके ही वैकल्पिक संस्करण है, ऐसे संस्करण जिनमें वो करने की हिम्मत थी जो उसने नहीं की। और ठीक इसी कारण से ऐसे संस्करण जिनसे वो समान तीव्रता से नफरत और ईर्ष्या करता है। उनसे नफरत करना इस भ्रम को बनाए रखने का एक तरीका है कि हम अलग हैं, कि हम बेहतर हैं, कि हमारी सीमाएं कायरता के बजाय गुणी विकल्प है। लेकिन ये खोज हमें और भी अंधेरे क्षेत्र में ले जाती है। यदि हमारे दुश्मन खुद के प्रक्षेपण है तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से नष्ट करना सिर्फ उन पर हमला नहीं है, ये हमारी अपनी क्षमता पर हमला है। ये खुद को अपंग करने, खुद को छोटा रखने, ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हम कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो हम वास्तव में हो सकते थे। अच्छे और बुरे से परे की स्वतंत्रता। हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब वो आईने में देखता है और उस दुश्मन के चेहरे को पहचानता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो पल विनाशकारी होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि दूसरों पर श्रेष्ठता पर आधारित हमारी पूरी पहचान एक ही बार में ढह जाती है। हम पाते हैं कि हम अपनी कहानी के नायक नहीं हैं, हम उसी मानवीय नाटक में बस एक और किरदार हैं, जिसकी हमने इतनी आलोचना की है। नीचे ने इस पल को अच्छे और बुरे से परे, बियॉन्ड गुड एंड ईविल कहा। इसलिए नहीं कि कोई नैतिक अंतर नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम पाते हैं कि सद्गुण और अवगुण के बीच की रेखा हमारे और दूसरों के बीच नहीं चलती है, ये हम में से प्रत्येक के माध्यम से चलती है। जब ऐसा होता है तो दो चीजें हो सकती है, पहली है पूरी निराशा, लेकिन एक दूसरी संभावना है बहुत दुर्लभ और बहुत अधिक खतरनाक, स्वतंत्रता। खुद के वैकल्पिक संस्करणों से नफरत करने में ऊर्जा बर्बाद करना बंद करने की स्वतंत्रता, दूसरों के इनकार पर अपनी पहचान बनाना बंद करने की स्वतंत्रता, अंत में कुछ अपना बनाने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता डरावनी है क्योंकि इसका मतलब है इस निश्चितता को छोड़ देना कि हम सही पक्ष में हैं। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि शायद कोई पक्ष ही नहीं। इसका मतलब सब कुछ माफ करना या सब कुछ सापेक्ष करना नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी मौलिक है। अपनी साधारणता के बहाने के रूप में दूसरों की बुराई का उपयोग करना बंद करना। इसका मतलब है अपने स्वयं के मूल्यों को बनाने, अपने स्वयं के जीवन की पुष्टि करने, दूसरों के होने पर नहीं कहने के बजाय हम जो बनना चाहते हैं उसे हां कहने की भयानक और मुक्तिदायक जिम्मेदारी लेना। उन दुर्लभ व्यक्तियों के लिए जो इस खाई को पार करने में सफल होते हैं एक अनूठी संभावना खुलती है, केवल एक प्रतिक्रियात्मक जीवन के बजाय एक रचनात्मक जीवन की संभावना, केवल नष्ट करने के बजाय निर्माण करने की संभावना, केवल नफरत करने के बजाय प्यार करने की संभावना। शायद सबसे परेशान करने वाली सच्चाई यह है, हमारे दुश्मन कभी समस्या नहीं थे, समस्या हमेशा उनकी जरूरत थी। और जिस दिन हम उनके बिना काम चलाने में कामयाब हो जाएंगे, हम कुछ ऐसा खोज लेंगे जो वे हमेशा जानते थे और हमने हमेशा नकारा, कि हम बिल्कुल उनकी तरह हैं, और ये कि ये समानता कोई निंदा नहीं बल्कि एक मुक्ति है। आपने खुद को देखने से बचने के लिए कौन सा दुश्मन बनाया है इसे कमेंट्स में लिखें। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पहले ही अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आप वीडियो देखते हैं, आप हर विचार पर चिंतन करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इसके साथ कितनी दूर जाना चाहते हैं। यदि आप अगला कदम उठाना चाहते हैं और वास्तव में इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो सफेद खरगोश के कोड आपके लिए तैयार है, लिंक पिन किए गए कमेंट में है। याद रखें, सफलता एक निर्णय है, चुनाव आपका है।